ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। मानसून जन्य आपदा का सामना करने के लिए तैयारी की स्थिति में रहने का राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण को संसदीय समिति ने किया निर्देश। हुमला के तील गांव में आई बाढ़ और भूस्खलन के मामले का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ दल पहुंचा हुमला। आगामी आर्थिक वर्ष का बजट नीतिगत स्थिरता और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने वाला होना चाहिए, उद्योग व्यवसायियों की मांग। संविधान विरोधी गतिविधियों की अनुमति किसी को भी नहीं है, सरकार के प्रवक्ता एवं सूचना एवं संचार प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग का बयान। और भारत के विभिन्न शहरों में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित, 4 लोगों की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। हिमाली जिला हुमला के नामखा गांव पालिका 6 लीमी के तिल गांव में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारणों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ दल आज हुमला पहुंचा। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के सीनियर डिवीजन इंजीनियर सुशील कुमार श्रेष्ठ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल आज सीमकोट पहुंचा और तुरंत उत्तरी नामखा के तिल गांव की ओर रवाना हो गया। जेठे 1 गते रात अचानक आई बाढ़ के कारण तिल गांव के 32 स्थानीय निवासी अब भी सुरक्षित स्थान पर स्कूल और तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। वहीं तिल गांव में आए बाढ़ हिमस्खलन में विस्थापित हुए लोगों को कर्णाली प्रदेश सरकार ने राहत सामग्री भेजी है। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी हुमला शाखा ने भी राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। प्रतिनिधि सभा की अर्थ समिति ने आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में शामिल किए जाने वाले विषयों पर निजी क्षेत्र के साथ चर्चा की। आज हुई समिति की बैठक में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 का बजट नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने वाला होना चाहिए। निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने यह भी सुझाव दिया कि आगामी दशक को निवेश दशक, लगानी दशक घोषित करके निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैठक में सांसदों ने देश की विकास स्थिति को ध्यान में रखते हुए समावेशी और संतुलित बजट आवंटन करने, औचित्य के आधार पर परियोजना का चयन करने तथा अर्थव्यवस्था के विकास में राज्य की नेतृत्वकारी भूमिका के साथ साथ निजी क्षेत्र को साथ लेकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ओली ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि पिछले 10 महीनों में पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में 73% की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। प्रतिनिधि सभा की सार्वजनिक लेखा समिति ने शिकायतों की जांच के लिए गठित उप समितियों को तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आज हुई समिति की बैठक में समिति अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेल ने कहा कि शिकायतों की जांच के लिए गठित सभी उप समितियों को 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। समिति द्वारा अब तक विभिन्न शिकायतों की जांच हेतु 9 उप समितियां गठित की गई है। संचार एवं सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि संविधान विरोधी गतिविधियां सरकार के लिए अस्वीकार्य है। इसी जेठ 6 को मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को सार्वजनिक करने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन संविधान विरोधी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मंत्री गुरुंग ने कहा कि नेपाल की सार्वभौम जनता द्वारा निर्मित संविधान के विरुद्ध जाने वाली गतिविधियां जैसे राजतंत्र की वकालत करना या देश के विखंडन की बात करना संविधान विरोधी मानी जाएगी। उन्होंने सभी को ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही मंत्रिपरिषद ने आर्थिक सुधार सुझाव आयोग 2081 की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए तैयार आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्य योजना 2022 को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी मंत्री गुरुंग ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। उ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर। अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। मध्यस प्रदेश सरकार और सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल बीच मध्यस प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम के मध्यस भवन में रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलीविजन के मध्यस ब्यूरो कार्यालय संचालन करने के संबंध में समझौता पर आज हस्ताक्षर हुआ है। मध्यस प्रदेश सरकार द्वारा प्रयोग में रहे कवर्ड हॉल के साथ के चार रूम में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलीविजन के स्टूडियो सहित संरचना निर्माण करके विभिन्न प्रकार के प्रसारण सामग्री उत्पादन कर रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय बर्दीबांस तथा नेपाल टेलीविजन के इटहरी प्रसारण केन्द्र से प्रसारण करने का समझौता हुआ है। मध्यस प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह, मध्यस प्रदेश सरकार के गृह संचार तथा कानून मंत्री राजकुमार लेखी और सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट के उपस्थिति में दो पक्षीय समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। मध्यस प्रदेश के प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुबेदी भंडारी ने कहा कि मध्यस प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में नेपाल के इतिहास कायम के लिए रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन के प्रदेश के गतिविधि जनता समक्ष पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है। आज प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट सहित के रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलीविजन के प्रदेश कार्यालय के कर्मचारियों के साथ के भेंट में प्रदेश प्रमुख भंडारी ने कहा कि मध्यस प्रदेश के विषयों को उजागर करने में रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलीविजन के जनकपुर धाम में खुलने जा रहे ब्यूरो कार्यालय से मदद मिलेगी। कार्यक्रम में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बिष्ट ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल से प्रदेश सरकार के साथ आज हुए समझौता तथा अन्य गतिविधि के विषय में प्रदेश प्रमुख को जानकारी कराई। सरकार ने कंचनपुर के 7 वार्डों को 3 महीने के लिए विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा किया है। जिला विपद व्यवस्थापन समिति की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय किया है। ये जानकारी कंचनपुर के प्रमुख जिला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल ने दी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने मुगू की सोरू गांव पालिका के तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेंद्र मल्ल सहित 11 लोगों के विरुद्ध 23,22,000 रूपये का भ्रष्टाचार के मुकदमा दर्ज किया है। मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत सोरू गांव पालिका वार्ड नंबर 10 स्थित शहीद गेट से कोर्ट तक सड़क निर्माण में अधिक काम किए होने के मूल्यांकन सहित के कार्य सम्पन्न के प्रतिवेदन तैयार करके अपचलन किए के आरोप में 11 लोगों के विरुद्ध आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता राजेंद्र पौड़ेल ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के विभिन्न हिस्सों में मानसून की भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। स्थानीय प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ जैसे हालात हैं। मुंबई में भारी बारिश के कारण यातायात व्यवस्था बाधित बना हुआ है। दिल्ली NCR में जल भराव की समस्या, केरल में भूस्खलन की आशंका जताई गई है। NDRF और स्थानीय टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने और अधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों द्वारा लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मानसून जन्य आपदा का सामना करने के लिए तैयारी की स्थिति में रहने का राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण को संसदीय समिति ने किया निर्देश। हुमला के तिलगांव में आई बाढ़ और भूस्खलन के मामले का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ दल पहुंचा हुमला। आगामी आर्थिक वर्ष का बजट नीतिगत स्थिरता और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने वाला होना चाहिए, उद्योग व्यवसायियों की मांग। संविधान विरोधी गतिविधियों की अनुमति किसी को भी नहीं है, सरकार के प्रवक्ता एवं सूचना एवं संचार प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग का बयान। और भारत के विभिन्न शहरों में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित, 4 लोगों की मृत्यु। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।